शमशेर की शमशेरियत। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का जो एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है, उसमें जाने से मुक्तिबोध को भी डर लगता था, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। इस पवित्रता का एहसास मुझे भी है और डर भी कम नहीं। अंदर जाने से उस पवित्रता में शायद खलल पड़े, इसलिए बाहर बाहर की ही परिक्रमा, बाहर से अंदर की जो भी झलक मिल जाए उसी से संतोष करना पड़ेगा फिलहाल। यह पवित्रता किसी मंदिर की नहीं है, यह कोई और भवन नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति का भवन है, कवि की कार्यशाला, अपना घर, बड़े जतन से बनाया हुआ, अपनी हड्डियां गलाकर, अपना खून जलाकर। ओ मेरे घर शीर्षक कविता का घर, जिसने इंसान के अखौटे में डालकर मुझे सब कुछ तो दे दिया, जब मुझे मेरे कवि का बीज दिया कटुतिक्त। कितना अलग है यह शमशेर का घर सबसे। वह आलिशान गुंबद बाहर से दिख जाता है, जिसमें बकौल मलयज सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज़ गूंजती रहती है, वह आवाज़ शमशेर की है, बाहर से भी साफ सुनी जा सकती है, इसलिए नहीं कि ऊंची है, इसलिए कि गूंजती है मध्यम होने के बावजूद, कभी कभी एकदम खामोश भी। यह किसी पुजारी की प्रार्थना नहीं, कवि का एकालाप है। शमशेर की प्राय सभी कविताएं एकालाप है, आंतरिक एकालाप। बक रहा हूँ जुनू में क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई के अंदाज में। उसने मुझसे पूछा इन शब्दों का क्या मतलब है, मैंने कहा शब्द कहाँ है राग। एक नए ढंग का लिरिक है, एकालाप में संलाप और संलाप में एकालाप। यह कोई चिर परिचित गीत नहीं, गद्य है, बोलचाल के लय का गद्य, रुक रुक कर आगे बढ़ता हुआ, विलंबित, विपर्यस्त, फिर भी कविता, टूटी हुई बिखरी हुई नहीं, जैसा कि कुछ लोग समझ बैठे हैं, अत्यधिक सुगठित, हर तरह के झोल को हटाकर, फालतू शब्दों को निकालकर जतन से रचा हुआ, साबित करते हुए कि कविता को गद्य की तरह ही सुलिखित होना चाहिए, एकदम ठोस लेकिन ठस नहीं, कहीं कहीं शोखी भी शमशेरियत लिए हुए। स्वर में दर्द है निसंदेह, आह वो भी कम नहीं, लेकिन मैथिली शरणगुप्त की हाय हाय नहीं। अजीब है यह दर्द, प्रेम की पीड़ा लेकिन वही नहीं, अकेलेपन का अवसाद लेकिन कुछ और भी, जीवन की विडंबना, जगत की विषमता, और भी बहुत कुछ। रोमांटिक विषाद से अलग, रुलाता नहीं, सोच में डाल देता है, सोच लें और उदास हो जाएं। अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध तारक सा अतल में। खास बात यही है कि वह आंसू अंत तक अटका ही रहता है, पतझर का जरा अटका हुआ पत्ता, जब आंसू छलक न जाकर आकाश का फूल बन गया हो, आर्षवाणी में कहें तो शोक श्लोक बन गया हो, वस्तुतः यह करुणा है, मानवीय करुणा, जीवन का गहरा ट्रैजिक बोध। इस करुणा का मर्म समझने के लिए जरूरी है यह सोचना कि शमशेर ने इतने शोक गीत क्यों लिखे। इतने शोक गीत की एक जगह इकट्ठा कर दें तो पूरी एक किताब बन जाए, और शोक गीत भी किस किस पर, कोई गुमनाम सा कम्युनिस्ट साथी, कोई कम्युनिस्ट नेता, कोई शमशील साहित्यकार, एक माई जो अपनी माँ नहीं, मृत्यु से यह मुठभेड़ अन्यत्र भी है, उन अनेक कविताओं में जो ठेठ शोक गीत नहीं है, मृत्यु का साक्षात्कार शमशेर को जैसे शुरू में ही हो गया था। स्थिर है शव सी बात, कविता सन 37 की है, जिसकी बात आज भी सेहरन पैदा करती है, तब की हिंदी कविता में तो अनूठी थी ही। यह अस्तित्ववादी मृत्युबोध नहीं है और न ही मरण सुंदर वन आयरी की रोमांटिक कल्पना। शमशेर के लिए मृत्यु ख्याल नहीं, हकीकत है, प्रेम की तीव्र अनुभूति के क्षण में भी साक्षात उपस्थिति। किड्स की कविताओं की तरह प्रेम और मृत्यु आजू बाजू साथ साथ। शमशेर के लिए मृत्यु स्वयं काल है, जिससे कतरा कर निकल जाना गंवारा नहीं है कवि को, इसीलिए काल तुझसे होड़ है मेरी, अपराजित तू तुझ में अपराजित मैं वास करूं। यह होड़ है कला की काल से, इस होड़ मुठभेड़ से ही शमशेर ने कालजयी कला उपलब्ध की है, कलाकाल जई कालातीत नहीं। अपनी कार्यशाला में शमशेर अकेले चाहे जितने हों, लोग बाग से वह काफ़ी भरी पूरी है। कितनी कविताएं सिर्फ व्यक्तियों पर है, इतने व्यक्तियों पर शायद ही किसी कवि ने कविताएं लिखी हों। यह व्यक्ति क्या वे सूत्र हैं जिनके माध्यम से वे दुनिया के इंसानों से जुड़ने की कोशिश करते हैं? समाज अमूर्त संकल्पना है, ऐसे अमूर्त समाज से जुड़ने वाले कवि और होंगे। शमशेर के लिए तो जैसे हाड़ मास के जीते जागते इंसान ही समाज हैं, जिनका अपना चेहरा है, अपनी पहचान है, अपना सुख दुख है, छोटा ही सही पर सच्चा। शमशेर ऐसे ही व्यक्तियों को अपने पास, इतने पास अपने खींच लाते हैं कि उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। और इस एक तरह अंत में कविता, मुजस्सिम कविता, क्या ये लक्षण किसी आत्मग्रस्त अंतर्मुखी और सामाजिक कवि के हैं? अपनी एक कविता की शुरुआत ही शमशेर ने इन पंक्तियों से की है। मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, मैं वह आईना हूँ जिसमें आप हैं। इस कविता का शीर्षक है बाढ़ 1948। पहली बार संकेत में प्रकाशित हुई थी, किसी काव्य संकलन में फिर नहीं आई, अभी शयन में पढ़ी जा सकती है। इस विषयांतर को छोड़ दें तो कहना यह है कि उर्दू हिंदी के इस दुआब की कविताओं में आईना अक्सर आता है। हिंदी की किसी कवि में आईना की इतनी पूछ नहीं। शमशेर के काव्य लोक में घूमते हुए लगता है कि आईना खाने में कोई लिए जाता है मुझे। यह आईना हैरान होता नहीं, हैरान करता है। यह स्तिंधाल का शहर में घूमता आईना नहीं है, एक कवि की चमकती हुई तरल तरल आँखों की पुतली है जिसमें सारी कायनात बंद है। सूर्य मेरी पुतलियों में स्नान करता। शमशेर की कार्यशाला सचमुच एक विशाल चित्रशाला है, रंगों का महोत्सव। कहीं धूप आईने में खड़ी है और कहीं धूप थपेड़े मारती है थप थप केले के हाथों से, पानी से केले के थंबों पर, और कहीं उषा के जल में सूर्य का स्तंभ हिल रहा है। अकेले एक धूप के ही कितने कितने रूप। वैसे शमशेर का अपना प्रिय रंग सांवला है, जो कभी कभी केसरिया सांवलापन भी हो जाता है, कभी सांवली संगमरमरी आबशार, और कभी देखिए तो एक नीला दरिया बरस रहा है। इस चित्रशाला में इतने रंगों की लीला है, तरह तरह के रंगों की इतनी घुलावट है कि सबका विवरण देना लगभग असंभव है। हिंदी कविता में रंगों का ऐसा महोत्सव अन्यत्र दुर्लभ है। सचमुच ही कभी घंघोल देता है, हिला मिला देता कई दर्पणों के जल। ये सभी चित्र अनिवार्यतः इम्प्रेशनिस्टिक ही नहीं है, कुछ सुरियलिस्टिक भी हैं। कुछ सरल रेखांकन मात्र हैं और कुछ पत्थर की तराशे हुई मूर्ति की तरह ठोस भी। जो शमशेर को शुद्ध सौंदर्य का कवि बनाने के आग्रही हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए उन छवियों की ओर संकेत करना पर्याप्त होगा जिनमें अकुंठ मन से शरीर का उत्सव रचा गया है। शमशेर के लिए सौंदर्य एक ठोस बदन अष्ट धातु का सा है, जिसमें जंघाएं ठोस दरिया ठहरे हुए से हैं। कवि की पहली प्रेमिका जो आईने की तरह साफ है और बदन के माध्यम से ही बात करती है, और वह कांसे का चिकना बदन हवा में हिल रहा है। हिंदी कविता में कहाँ है ऐसी सघन ऐन्द्रिकता। कलाकृतियां भी शमशेर की संवेदनशील ऐन्द्रिय चेतना को उसी प्रकार उद्बुद्ध करती हैं जैसे सुडौल नारी शरीर और संध्या या उषा की लाली। वान गाग और पिकासो के चित्र देखकर, बाख का संगीत सुनकर जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं, उनसे हिंदी कविता में एक नई वृत्ति की शुरुआत हुई। बाद में इस तरह की कविताएं औरों ने भी लिखी, लेकिन अनुकरण अंततः अनुकरण ही है। चीनी भाषा के चित्रलिपि और ग्रीक वर्णों के रूपाकार का आकर्षण भी इसी सौंदर्य वृत्ति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा का रूपाकार भी शमशेर के लिए एक आश्चर्य लोक रहा है। यह कोरी प्रयोगशीलता नहीं बल्कि कवि की कलानुभूति का अतिरिक्त आयाम है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नारी शरीर भी शमशेर के लिए जैसे एक कलाकृति है, अपने रूपाकार मात्र के लिए आकर्षक। कविता में कला का ऐसा संयोजन और यह वैभव कालिदास के बाद शमशेर के ही काव्य में संभव हो पाया है। शब्द रंग भी हैं, रेखा भी और सुर भी। शब्द में निहित इन संभावनाओं की तलाश जैसी शमशेर में है अन्यत्र विरल है। लेकिन शमशेर सौंदर्य के ही नहीं प्रेम के कुछ विलक्षण अनुभवों के भी चित्रकार हैं। थरथराता रहा जैसे बीत मेरा काय जितनी देर तक आपदा मस्तक। स्वयं कवि के अनुसार यह एक विचित्र प्रेम अनुभव थी, लेकिन उससे किसी तरह कम विचित्र युवा अनुभूति नहीं है जब वे कहते हैं, तुमने मुझे और गूंगा बना दिया, अपनी भाषा तो भूल ही गया जैसे चारों ओर।